वो पैगंबर तुमको क्या आदर्श देता है? तो उस वक्त जो मुसलमानों की तरफ से क्यादत कर रहे थे, मुसलमानों की तरफ से क्यादत कर रहे थे जो, उन्होंने कहा था कि हमारे दरमियान वो पैगंबर हम ही में से आया है, नसब के एतबार से बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा अमानतदार है। हम मुर्दार खाते थे, उसने मना कर दिया। हम बुतों की पूजा करते थे, उसने हमें एक खुदा की तौहीद उलूहियत और उसकी इबादत का दर्स दिया। हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, उसने मोहब्बत का दर्स दिया है। इतना सुनना था कि नज्जाशी ने कहा कि ये तो बातें बहुत अच्छी हैं, ये तो पैगंबर की अलामत यही सब होती है। और फिर वो उनका वक्त, उनका डेलीगेशन जो गया था मक्के से कि ताकि उनको वापस ले आएंगे, वापस ले आए, नाकाम होकर। ये खसूसियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौरात, इंजील, जबूर वगैरह के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें कुल्लियतन जिक्र की गई है। लास्ट वीक का दर्स याद कर लीजिए, जो हमने ओ मुबशिरन बिरसूल यातीन बाद अहमद खुदा ताल्लुक से बयान किया था कि अगर तौरात और इंजील को इन लोगों ने बदला ना होता तो हुजूर की तारीफ, तौसीफ, मदह, सताइश और नाद से ये दोनों किताबें भरी पड़ी हुई है। पीर करम शाह अजहरी की किताब तफसीर और कुरान का ये हाशिया पढ़ें जो वमबशरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद के ऊपर लिखा हुआ है कि जब ये बरनबास की जो ये है ओल्ड टेस्टामेंट, बरनबास की जो उसके ऊपर के जहां जहां इसका जिक्र किया गया है, हुजूर की सिफात रऊफ रहीम शाफे नाफे वगैरह जिक्र की गई है। ये अब इनका दिमाग जो है वो दौलत के पुजारी थे, दौलत का हसूल था, दौलत ही इनका मतबह नजर था, खुद भी तबाह हुई, सारी दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन अल्लाह जल्ला शानहु ने अपने महबूब के इज्जत, आबरू, इर्तका, बुलंदी और जो उलूए दर्जात अता फरमाए हैं वो तो कुछ दुनिया का कोई भी घटा नहीं सकता है। तो घटाए से किसी के न घटा है, न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। तो ये है कि इस उम्मीदीन के दरमियान वो रसूल तशरीफ लाए और ये फजीलतें उनको अता फरमा दी, उम्मीदों को, कि वो उम्मी अहले किताब बन गए अब, कि उनके ऊपर कुरान मुकद्दस की तिलावतें तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, आयतें तिलावत की जाती हैं, तो वो खुद साहिब इल्म बन गए। उन्हें पैगंबर ने ऐसा पाक कर दिया कि अब सारी दुनिया को खुद सफाई सुथराई का दर्स देते हैं, और फिर किताब व हिकमत के ऐसे आलिम बन गए कि सारी दुनिया को अपने सामने झुका लिया उन्होंने। وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, और उनमें से औरों को पाक करते हैं और इल्म अता फरमाते हैं जो उन अगलों से न मिले, और वही इज्जत और हिकमत वाला है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, ये जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने जाहिरी तक जो लोग हैं सहाबे किराम, उनको तो अल्लाह के रसूल ने पाक फरमाया, लेकिन बाज वो लोग जो अब इनके जमाने में नहीं लेकिन बाद में इनके जमाने वालों के साथ मिलने वालों, मिलने वाले, ये पैगंबर उनको भी पाक करते हैं, हमको पाक करते हैं, आपको पाक करते हैं, इसलिए कि हम वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम के जुमरे में आते हैं। सहाबा कराम से ताबईन मिले, ताबईन से तबे ताबईन मिले, तबे ताबईन से उनके बाद के अदवार वाले मिले, उनके बाद से उनके बाद वाले, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये जमाना आया सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का, इमाम अहले सुन्नत के बाद जो उलमा गुजरे वो उनसे मिले, अब उनसे मिले हुए, आप हमसे मिले हुए हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम, कि वो पैगम्बर बाद वालों को भी पाक करते हैं। ये एहसान है कि हम पाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अहले किताब का इल्म हमें अता फरमाया गया, हिकमत हमें अता फरमाई गई, और सी बात है कि हम उसका इजहार ना कर सकें और उसको जब्त ना कर सकें, लेकिन अल्लाह के रसूल की तरफ से हमारे लिए दरवाजा खुला हुआ है, किताब खुली हुई है, असबाक खुले हुए हैं, दर्स जारी है, लेकिन वो तो नसीब की बात होती, कौन कितना जाता। इमाम कुर्तुबी ने इसमें एक दो हदीसें नकल की हैं, जरा उसको सुन लीजिए और जो इन्होंने मफहूम निकाला है उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा समझने की। कहते हैं कि وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزلت عليه سوره الجمعه فلما قرا واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساله مره او مرتين او ثلاثا قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء حضرت ابو هريره کی روایت ہے کہ ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں سورہ جمعہ شریف اتر رہی تھی وحی آ رہی تھی ویا کہ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سورہ جمعہ شریف کے نزول کے چشمدید گواہ یہ حضور کے اوپر وحی کی کیفیت کا اثر طاری ہو گیا اور حضور کے اوپر وحی آنی شروع ہو گئی۔ وحی کا جب اثر ختم ہوا تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضور نے جب پڑھ کے، حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب وحی اترتی ہے صحابہ کرام کے دربان پڑھ کے سناتے تھے، جو یاد کر لیتا یاد کر لیتا، ورنہ اپنے کاتبین کو بلا کے فرماتے کہ اس کو لکھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے پھر پڑھ کر کے سنایا، تو جب اس پر پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لوگ جو ابھی نہیں آئے ہیں ان سے ملنے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ حضور خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضور پھر چپ رہے، جواب نہیں دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ شاید دو یا تین مرتبہ انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوضع النبی یده علی سلمان، حضور نے اپنا ہاتھ شریف حضرت سلمان کے اوپر رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنا له رجال من هؤلاء، ایمان اگر ثریا پر ہوگا، ثریا ستارہ، اگر ثریا پر بھی ہوگا تو اس میں سے حضرت سلمان کی طرف اشارہ کر کے، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو وہاں سے جا کر کے لے آئے۔ پہلی روایت۔ دوسری روایت، وفی روایت لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس، کہ اگر دین، پہلے میں ایمان تھا دوسرے میں دین ہے، کہ اگر دین ثریا پر ہوگا تو فارس کا ایک آدمی وہاں سے جا کر کے لے آئے، سمجھا؟ او قال من ابناء فارس حتى يتناوله، فارس والوں میں سے کوئی ہوگا جو جا کر کے وہاں سے پا لے گا۔ اس حدیث کو مشکات میں انہی روایتوں کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فضائل سجدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے مراد سجدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ اہل فارس سے ہیں وہ، اور انہوں نے ثریا سے ایمان اور دین کو توڑ لیا اور دین مبین کی ایسی خدمت کی کہ بعد کے سارے فقہا ان کے مرہون منت ہو گئے۔ وقت نہیں، ورنہ میں ابھی تھوڑی سی تاریخی حیثیت بیان کرتا اس میں سیدنا امام اعظم کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوفہ میں بڑے بڑے فقیہ تھے، حضرت وقی، آپ کے استاد مکرم حضرت حماد وغیرہ، بڑے بڑے فقیہ موجود تھے، لیکن جو اعزاز و شرافت اور منزلت و قدرت، قدر و منزلت اور قبولیت سیدنا امام اعظم کو حاصل ہوئی، بڑے بڑے فقہا کو حاصل نہیں ہو سکی۔ بڑے بڑے مجتہدین تھے وہاں پہ، حضرت بقی اتنے عظیم الشان فقی تھے جس کا کوئی حدیث، مجتہد تھے، حضرت حماد آپ کے استاد گرامی مجتہد تھے، لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف آپ کو حاصل ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ امام اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ آسمان سے تارے ہو، اور سیدنا فیض الاختار رحمہ اللہ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں، اور حضرت سیدنا داتا گجبخت خجواری نے کتاب کشف المحجوب کے اندر بیان فرمایا واقعہ، کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی گود میں ایک شخص ہے، وہ رسول اللہ کون ہے؟ کابو حنیفہ، हुजूर अपने गोद में उठाए हुए हैं, अबू हनीफा। इस वजह से कि सैयदना आदम ने दीन के अंदर पाई जाने वाले मुश्किलात की राहें हल की। जब इस्लाम फैला, अरब से निकल कर गाजा में पहुंचा और नए नए मसाइल उठ करके उभर करके निगाहों के सामने आए, अकल नहीं काम करती थी लोगों की, इनका हल क्या निकाला जाए। ऐसे ऐसे मसले जिसका कोई यदि किताबें पढ़ेगा, ऐसे ऐसे मसले, लेकिन वाह अल्लाह ने वो अकल अता फरमाई थी, खुदा की कसम ऐसी अकल अता फरमाई थी कि जिस चीज के बारे में जो फैसला कर दिया, अब किसी के अंदर 32 दांत नहीं है कि फिर उसका जवाब दे सकता। वो हरफे आखिर बन गया। और बाद के अजमे मुज्तहिदीन खास तौर से हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह ने तो आपके शागिर्दों की इत्तेबा की। आप तो बहुत बड़ी बात, आपके शागिर्दों की इत्तेबा की है। हजरत इमाम शाफी, सैयदना इमाम अबू इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं। हजरत इमाम आजम के 4000 शागिर्द थे, उसमें से 3 शागिर्द बहुत ज्यादा मशहूर, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर इब्न हुज़ैल। अब्दुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी आपके शागिर्द हैं इस बात में, लेकिन ये 3 बहुत मशहूर हुए। और इसमें खास तौर से इन तीनों की फिकह इजाद, लेकिन इसमें भी खास तौर से जो शरफ सैयदना इमाम अबू यूसुफ को हासिल हुआ, किसी को हासिल नहीं। ये बहरहाल एक नई बहस है। तो फिर उसके बाद आगे चलकर इमाम कुर्तबी एक और हदीस नकल करते हैं इसी हवाले से, वह आखिरी ना मिनहुम के अतबार से कहते हैं कि वरावा सहल इब्न सआद अस-साईदी سعد السعيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أصلاب أمتي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب ثم تلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم۔ حضور نے فرمایا، حضرت سعد السعيدی کہتے ہیں، سعد بن سعد السعيدی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت کے مردوں اور عورتوں کے صلبوں یعنی پیٹھوں میں ऐसी ऐसे लोग हैं, ऐसे इतना कहता हूं मेरी उम्मत के मर्दों के सुल्ब में ऐसे लोग हैं, मर्द और औरतें हैं कि जिनको अल्लाह तबारक तआला कयामत के दिन बगैर हिसाब जन्नत में जाने। अभी तक यह हदीस इस हवाले से कि वो लोग जो सहाबे कराम के दौरे पाक में थे और हुजूर ने जिनको मुख्तस कर दिया था कि ये बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, ये उनके अलावा है। फिर फरमाते हैं उसके बाद यह आयत करीमा हुजूर ने तिलावत फरमाई, वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम। और एक और रवायत में लिखी गई, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال رأيتني أسقي غنما سودا ثم اتبعتها غنما عفرا قبلها يا ابو بكر قال يا رسول الله اما السود فالعرب واما العفر فالعجم تتبعك بعد العرب۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سیاہ بھیڑوں کو سیراب کر رہا ہوں، پانی پلا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر کچھ موٹی قسم کی بھیڑیں آئیں، ان کو بھی سیراب کیا ہے۔ ابوبکر اس کی تعبیر کرو، فرمایا ابوبکر اس کی تعبیر بتاؤ۔ سبحان اللہ، اعزاز دیکھ رہے ہیں، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب بلا یا ابوبکر اس کی تعبیر تم بتا دو۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وہ اسرار و علوم جو اوروں کو نہیں عطا فرمائے، صدیق اکبر کو عطا فرما دیے، ہے نا؟ تو آپ نے اس کی تعبیر فرمائی، یا رسول اللہ وہ جو کالی بھیڑے ہیں نا، اس سے مراد عرب ہیں، اور جو موٹی بھیڑے ہیں آپ نے خواب میں دیکھا، اس سے مراد عجب ہیں، جو عجم لوگ، عجم عجمی لوگ ہیں، عجم کے لوگ ہیں جو ان عربوں کو فالو کریں۔ اور وہی ہوا، وہی ہوا۔ اب آپ دیکھو، امام بخاری عربی ہے کہ عجمی؟ عجمی ہے۔ امام مسلم عجمی ہے، نسائی عجمی ہے، امام مالک کو چھوڑ کر کے بقیہ جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب عجمی ہیں، اور جتنے محدثین ہیں وہ سب عجمی ہیں. یہ اعزاز حاصل ہے. عرب میں اسلام پھیلا ہے، لیکن جو اسلام کا تحفظ عجم نے کیا ہے عرب نہیں کر سکے. یہ اس خواب کی تعبیر تھی. تو آخرین منہم لما الحکم بہم کی تعبیر فرمائی اللہ کے قول خود اس کو فرما رہے ہیں. اچھا بہرحال یہ اللہ کا فضل جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، جسے چاہے تھا فرمائے. عربی اور عجمی کی کوئی تخصیص نہیں. اب اس کے بعد یہاں سے لے کر کے رکوع کی شروعات تک، وہ جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ کا جو انوائرمنٹ تھا اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. ترجمہ ایک ساتھ پڑھ دے رہا ہوں، اس بعد تشریح ایک ساتھ کر دوں گا. ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی. گدھے کی مثال ہے جو پیٹ پر کتابیں اٹھائے، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں اٹھائیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. تم فرماؤ یہ یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کرتوتوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. تم فرماؤ وہ موت جسے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا. ان پوری آیات میں توریت اور یہودیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، جنت ہماری ہے، جنت میں صرف ہم جائیں گے اور دوسرا کوئی نہیں جا سکتا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا ہے، تو پھر اللہ کا اگر دوست ہے تو اللہ سے ملنا چاہے گا، اس لیے کہ دوست دوست سے ملنے کے لیے بے قرار رہتا ہے. تو تم موت کی آرزو کر لو، کہو کہ اللہ نے جلدی موت دے دے تاکہ ہم تیرے پاس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے آئیں. قرآن کہتا ہے کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی زبان پر کچھ ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا کر کے آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ صف شریف کی آیت کریمہ گزر چکی ہے، لِمَا تُعْذُونَنِ، اے یہودیوں تو مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں، کیوں مجھ کو اذیت دیتے ہیں. پیغمبر خود یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود ان کی اذیت اور تکلیف سے پریشان. لِمَا تُعْذُونَنِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی تکلیف پہنچاتے ہو اس کو، اور تکلیف ایسی ایسی. اللہ لاسٹ ویک کا جو درس تھا اس میں جو لوگ نہیں تھے ان کو پھر وہی بات دہرانی پڑتی ہے، ایسی تکلیف. اِذْ هَمَّ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، یہ موسیٰ جاؤ تم تمہارا خدا جا کر کے لڑو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے. جب ارض مقدسہ میں داخل ہونے کی بات آئی تو یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے، اور آپ کی ذات والا صفات پر ایسے ایسے گھناؤنے الزام لگائے گئے، ایسے ایسے گھناؤنے الزام، اس کا کوئی حل نہیں. یعنی علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، کار نبوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کو تکلیف پہنچائی لوگوں نے، اور جب آپ توریت لینے چلے گئے تو پھر یہ کون سا تو تھا جس نے پرستش، بچھڑے کی پرستش شروع کروا دی، وہ کون تھا؟ یہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، لہذا یہ تمنا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری موت ہو جائے. ارے بھائی جب اللہ کے دوست تم ہی کہتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ صرف ہمیں کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو آرزو کر لو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، جاؤ. لیکن جائیں گے نہیں، इनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो, जानते हो, वो मौत तुमको मिल करके रहेगी। कहीं भी रहोगे तुम, तुम्हें मौत आनी ही आनी है। फैनो मुलाकी कुन सुम्मा तुरदूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा, तुमको मौत मिलेगी, तुम्हारे साथ मौत से सादका पढ़ना है और फिर उसी रब्बे करीम की बारगाह में तुमको वापस जाना है जिसके बारे में तुम्हारा दावा है कि हमारा दोस्त है, हमको दोस्त बना दीजिए। वो सब जानता है कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। अब अंदाजा लगाएं कि मदीने मुनव्वरा के उस माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दीने मुबीन की खिदमात करते हुए मुसलमानों को इनकरेज किया होगा, दीन को प्रोटेक्ट किया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हजूर की खसूसियत है, बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी बन जाए इसमें। अब इसके बाद सूरतुल जुमा के हवाले से, जुमा का जो आखिरी चैप्टर है उसको एक साथ तिलावत करके, कुछ मसायल है उसको अर्ज कर दूं और उसके बाद तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। पहली बात ये जाने, ए ईमान वालों, जब नमाज की आजान हो जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। फसाउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानो फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ। जुमा, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, قال ابو سلمہ اول من قال اما بعد كعب بن لؤلؤ وكان اول من سمى الجمعه جمعه وكان يقال ليوم الجمعه العروبه وقيل اول من سماها جمعه الانصار. قال ابو سيرين جمع اهل المدينه من قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وقبل ان تنزل الجمعه جمعه وهم الذين سموا الجمعه. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا گزرے ہیں، ان کا نام ہے کعب ابن لؤلؤ۔ کعب ابن لؤلؤ یہ غالباً حضور سے تقریباً 550 سال پہلے گزرے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جمعہ پڑھا تھا، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل عرب پہلے جمعہ کے دن کو عروبہ کہتے تھے، جمعہ نہیں کہتے تھے، عروبہ۔ کعب ابن لؤلؤ جو تھے یہ موحد تھے اور جمعہ کے دن لوگوں کو اکٹھا کر کے کچھ نیک باتیں بیان کرتے تھے، اس طرح سے تعلیم و تعلم و تبلیغ کا ایک سلسلہ اس وقت چل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی، حضرت مصعب تشریف لائے، مدینہ منورہ میں تعلیم فرمائی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں قرآن مقدس کی تعلیم ایسی عام ہوئی کہ بخاری کی روایت کے مطابق کہ گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتوں کے قریب بھن بھن آتی، ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ چنانچہ انہی نے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ، इन्होंने एक दिन ऐसे ही, अभी हुजूर हिजरत तशरीफ पर तशरीफ फरमा कर, हिजरत फरमा कर तशरीफ नहीं लाए, असाद इब्ने जुरारा ने एक दिन कहा कि यहूदियों ने शनिचर को अपने लिए खास कर लिया है, ईसाइयों ने इतवार को अपने लिए खास कर लिया है, आओ हम लोग भी एक दिन बना लें ताकि उस दिन इकट्ठा होकर के हम लोग भी अल्लाह की कुछ हम तो सना कुछ जिक्र कुछ नमाज वगैरह पढ़ती है। चुनांचे हजरत असाद इब्न जुरारा ने लोगों को इकट्ठा किया और नमाज उस वक्त के एतबार से जो नवाफिल वगैरह के अहकाम तो पढ़ते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके तशरीफ लाए, सबसे पहले कोबा में क्याम फरमाया आपने, फिर कोबा शरीफ से मदीने मुनव्वरा की जानिब बढ़े, कुबा शरीफ मदीने मनवरा के दरमियान तकरीबन 2-3 मील का फासला है, चले तो सदुल सादिक फरमाते हैं कि हिजरत के बाद हुजूर मदीने तजबा तशरीफ लाए तो 12वीं रबीउल अव्वल दोशंबा का दिन चाश्त के वक्त मकाम कुबा में क्याम फरमाया और मस्जिद की बुनियाद रखी, फिर रोजे जुमा मदीने तय्यबा का आजम फरमाया चलने के लिए, फिर बनी सालिम बिन औफ ये कोबा और मदीने मनवरा के बीच में एक महल्ला पड़ता था, हुजूर ने वहां क्याम फरमाया, वहीं जुमा का वक्त तो हुजूर ने वहीं जुमे की नमाज पढ़ी और वही सबसे पहला खुतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का अदा फरमाया और ये सूरत पाक का ये हिस्सा भी वही था। अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में इस गुनहगार फकीर को नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हो चुका है। ये एक कुबा शरीफ मदीने मुनव्वरा के पीछे माशाल्लाह। जरूर जो लोग जाएं उमरा वगैरह करने के लिए तो पूछें कि वो मस्जिद जुमा नाम मशहूर का मशहूर है, मस्जिद जुमा वहां जरूर 2 रकात नमाज पढ़ी
जी
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहां जुमे की नमाज पढ़ाई और उसके बाद फिर जुमा के दिन जहां पे शरायते जुमा पाई जाएंगी वहां पे जुहर की नमाज खत्म हो जाती और जुहर जुमा की कायम मुकाम बना दी जाती है, असल जुमा है, जुहर उसकी फरा है और जहां पे शरायत जुमा नहीं पाई जाएंगी वहां पे जुहर अपनी असल पर बरकरार है। इस सिलसिले में बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया गया है किताबों के अंदर, इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक और तमाम इमामों के नजदीक शरायत जुमा में से बहुत सारी शर्तें नकल फरमाने फरमाई गई हैं और हमारे नजदीक यानी अहनाफ के नजदीक इमाम को छोड़ करके कम से कम 4 आदमी होने चाहिए इज़्ने आम को जुमा कायम करने के लिए, आम इजाजत को इमाम को छोड़ करके 4 आदमी होने चाहिए, ये अहनाफ का मसला है, बाज अइमा के नजदीक 40 आदमी होने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। जुमे की आजान सुनते ही कारोबार छोड़ देना फर्ज है और जो शख्स अपने कारोबार को नहीं छोड़ता है वो हराम का इंतकाब करता है, मसलन बोलते चलिएगा तो कारोबार बंद कर देना चाहिए इस बुनियाद पर कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि वादारुल बई खरीदो फरोख्त बंद कर दो छोड़ दो जरूर, ये अम्र का सिला है और अम्र जो होता है वो वजूब के लिए हुआ करता है, ज्यादा इससे इसकी फर्जियत साबित है। अब आजान के ताल्लुक से कौन सी आजान, दरअसल अहद रिसालत में सिद्दीक अकबर के जमाने में सैयदना उमर फारूक के जमाने तक जुमे के दिन सिर्फ एक आजान हुआ करती थी, बस वो आजान कि जब खतीब मिंबर पर बैठता है और जो आजान होती है वो होती, बस सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मदीने मुनव्वरा की आबादी बहुत बढ़ गई और वो आजान जो मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर हुआ करती थी वो दूर तक नहीं पहुंच पाती थी, तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला उन्होंने एक बुलंद जगह पर शहर के अंदर जो अब पहली आजान है उस आजान का इजाफा था, और फिर वो उम्मत के लिए एक कानूनी हैसियत रखने लगी वो आजान, और अब चल रही है और क़यामत तक चल रही। तो पहली आजान जो होती है अब जो बाहर हमारे यहाँ होती है या हर जगह होती है, वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की इजाफा करता है। और दूसरी आजान जो बाज जगह मस्जिदों में मिंबर के पास होती है, हालांकि मिंबर के पास मस्जिद की आजान जायज नहीं है, मसला सुन लीजिए कान खोल करके, मिंबर के पास जो आजान होती है बिल्कुल ही गलत है। फुकहाए किराम ने इस सिलसिले में जो दलीलें दी वो एक लफ्ज है जो दोनों माना का इस्तेमाल रखता है और लोग उसी में धोखा खाते हैं, बैना यदैल इमाम, इमाम के सामने। तो इमाम के सामने का मतलब लोगों ने समझा कि मिंबर से बिल्कुल मिंबर से मिली हुई आजान होनी चाहिए। बैना यदैल इमाम का मतलब यह है कि जहां तक इमाम का रुख जा रहा उस वक्त बैना यदैल इमाम इमाम के सामने है। और इसकी दलील दी सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, फतावा रज़विया शरीफ वगैरह उठा करके पढ़िए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है कि सैयदना उस्मान गनी के जमाने में जो पहली आजान जो हज़रत उमर फारूक हज़रत उस्मान गनी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के जमाने में जो पहली आजान होती थी वो अला बाबिल मस्जिद, आया हुआ अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक में, मस्जिद के दरवाजे पर हुआ करती थी। क्या है के दरवाजे पर हुआ करती थी, और ये बात तमाम उलमा के नजदीक तयशुदा है कि मस्जिद का दरवाजा खारिज मस्जिद हुआ करता, दाखिल मस्जिद नहीं होता। ये बाकायदा हाशिया लिखा हुआ अबू दाऊद शरीफ की हदीस जहां को फरमाई गई वहां पे। लिहाजा जिन मस्जिदों में आजान मस्जिद के अंदर होती है वो सरासर लग गलत बेकार है। तीसरी बात यह है कि आजान का मकसूद क्या है, अभी मैंने अर्ज किया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में जब वो आजान होती तो दूर तक जाती थी लेकिन एक सब तक नहीं पहुंच पाती थी, तो एलाम इत्तला आगाही इंफॉर्मेशन के लिए आपने शहर के बीच में एक बुलंद जगह के ऊपर एक आदमी को मुकर्रर कर दिया कि तुम यहां खड़े होकर के बुलंद आवाज से आजान पढ़ो ताकि दूर दूर तक लोग उसको सुन करके समझ सके कि अब जुमा का टाइम हो गया है और कारोबार छोड़ करके फौरन नमाज की तरफ चल पड़े। तो अगर मिंबर के पास खड़े होकर के आजान पढ़ी जाएगी तो मकसूद कहां से हुआ उसका, वो जो चार पांच आदमी मस्जिद में होंगे, 10 आगे 50 आदमी होंगे खाली वही जानेंगे, बस मुसीबत ये हो गई है कि लोग टांगे ज्यादा लड़ाते हैं समझते कर रहे हैं। उलमा की काबिशें, उलमा के जो अहकार हैं, जो मेहनत करके वो मुताला करके स्टडी करके डीप स्टडी करके जो किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं वो सब बर्बाद हो जाती है, और चार आदमी हंगामा करने के बाद खड़े हो जाए वही मसला बन जाता है। लिहाजा ये दिमाग में रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फकीर ने इस मसले को कायम किया, खुदा करे कि क़यामत तक ये मसला यहाँ कायम रहे। यही हक है, जहां जहां मिंबर के पास आजान होती है बिल्कुल वो उसकी कोई असल नहीं है। अब ये कि आजान सुनने के बाद फौरन दौड़ पड़ो मस्जिद की तरफ, फसाऊ सायुन का माना दौड़ना, ये नहीं कि साहब दौड़ना शुरू कर दिया, ये नहीं मुराद है। इससे मुराद ये है कि बहुत ही इत्मीनान सुकून तमानियत के साथ आओ। और मसला भी यही है कि अगर कोई आदमी मस्जिद में आए और जमात हो रही है और ये कि साहब पहली रकात निकल जाएगी तो दौड़ता दौड़ता आया, उसके बाद अल्लाह अकबर करने के बाद अब्दुल यासीन को उसकी नमाज नहीं हुई, क्या कहा मैंने उसकी नमाज नहीं हुई, क्यों? दो बुनियादी वजह। नंबर एक, नमाज में कयाम फर्ज है और फर्ज के छूटने से नमाज नहीं होती है। हाँ, अगर उसने पहले खड़े होकर के अल्लाह अकबर कह दिया और फिर रुकू में गया और आस्तीन खोल रहा है तो अब नमाज तो होगी मगर मकरूह तहरीमी बादी गुलाल होगी, या अगर अमल कसीर हो गया फिर नमाज हासिल होगी। लिहाजा इत्मीनान के साथ आस्तीन खोलो, पानी बाहर पहुंच लो, आस्तीन खोलो, इत्मीनान से नियत करो अल्लाह अकबर कहते वक्त तक खड़े रहो, उसके बाद अब रुकू में जाओ, अगर रकात मिल गई तो सुबहान अल्लाह, नहीं रकात मिली दूसरी रकात मिल जाएगी आपको। उससे तो बेहतर है कि आप समझते हो कि साहब हमको रकात मिल गई और नमाजी खत्म है। गौर किया आप लोगों, आप तो समझते हो कि हमको तो नमाज मिल गई और मामला ये कि सरे से हुई गई, ये कितना बड़ा फर्क हुआ। ये इन मसायल को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो जरूर भाई खरीदो फरोख्त छोड़ दो उस वक्त। उलमा फरमाते हैं कि खरीदो फरोख्त उस वक्त हराम है। हाँ, जब नमाज पूरी कर लो तो फिर अब अपने अपने कामों में चले जाओ, इसलिए कि पहले काम पे रहना इबाहत है, आजान की बुनियाद पर वजूब साबित हुआ था, अब चूंकि नमाज मुकम्मल होगी तो वजूब खत्म हो गया, फिर मुबाह होना साबित हो गया, तो अब काम की तरफ चले जाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि काम की तरफ जाना फर्ज ही हो, आप चाहो तो मस्जिद में बैठे रहो। लेकिन हमारे असलाफ़े किबार के आमाल देखिए, मामूलात देखिए, बाज़ उलमा इस हदीस इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने के लिए कोई काम नहीं होता था उनको, लेकिन फिर भी वो बाजारों में चले जाते थे ताकि फसाऊ इला ये वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो इस आयत करीमा के इस जुज के ऊपर अमल। कोई काम नहीं होता था, ऐसी ही मार्केट में चले गए और टहल करके चले आए, कुछ देख लिया, कुछ ये बातचीत कर ली कि भाई ये कितने का वो कितने का, चले आए। खरीदना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ताकि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह के ऊपर अमल हो सके। खुदा की कसम उनके कदमों पर दस्तार रख देने का दिल चाहता है। ये एजाज, ये इज्जत, ये करामत और नजाबत लोग उलमा के मियार क्या समझ सकते हैं, जिनकी जुबानों के ऊपर गलाजतें भरी होती हैं वो उलमा के ऊपर तारीज़ और तंज करते हैं। बताओ कौन ऐसा शख्स है जो इस इस्तेहबाबी पहलू पर इतनी मोहब्बत के साथ अमल करता हो। आयत करीमा आखिरी आयत करीमा इसका तारीखी पस मंजर, और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा उसकी तरफ चल दिए और तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए, तुम फरमाओ वो जो अल्लाह के पास है खेल से और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह का रिज़्क सबसे अच्छा है। बात क्या थी, मदीने मनोरा में कैद साली पड़ गई थी, गल्ले की बड़ी कमी थी। सूरत हाल ये हुई कि आयन नमाज के वक्त सहाबे इकराम मस्जिद में मौजूद थे और उसी वक्त एक काफिला आया, काफिले की क़यादत कर रहे थे उस वक्त के जनाब ईमान अभी नहीं लाए थे, उनका नाम था दहिया, दहिया इसे कुछ नाम था। तो आए तो उनका तरीका ही उस वक्त होता था, जब काफिला आता था तो वो जो है ढोलक बजाते थे कि ताकि लोग मुतवज्जे हो जाएं काफिला आ गया और अपना अपना सामान आकर खरीद करके ले जाए। तो ढोलक बजनी शुरू हुई, हुजूर खुतबा दे रहे थे खड़े होकर के, तो लोगों ने सोचा कि अगर रुके रह जाएंगे तो फिर हो सकता है कि जिन्स खत्म हो जाए और हमको ना मिल सके, तो हुजूर के खुतबे को छोड़ करके वो रुक जाए। अल्लाह के रसूल की बारगाह अजमत में सिद्दीक अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा, इस तरह से 12 अजीम सहाबे किराम बैठे रहे। हुजूर को जाहिर सी बात है हुजूर खुतबा दे रहे थे, ये अमल निगाह मुबारक में नापसंद आया, फौरन आयत करीमा उतरी उसी वक्त और तंबीह कर दी गई के महबूब खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं, तुम समझते हो कि जिन्स बिक जाएगी, रिस्क खत्म हो जाएगा, तुमको नहीं मिल सकेगा। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बताओ सबसे अच्छा रिस्क कौन देता है, अल्लाह देता है। उसके बाद से फिर सहाबे किराम सहम गए और उसी वक्त से खुतबे में खड़े होकर के खुतबा देने का सबूत हो। आई बात समझ, बाद हजरात फिर करम साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कुछ शिया हजरात इस पर इतराज करते हैं कि देखो सहाबे करम का हाल यह था कि दुनिया के पीछे भाग गए, हुजूर को खड़ा छोड़ कर, इतना अच्छा जवाब दिया है, मैं उन्हीं की बोलकर सुना दिया, अच्छा लगेगा, उसमें खूबसूरत अल्फाज शायद मैं बयान कर सकूं। हैं इस बारे में गुजारिश है कि आखिर में एक एतराज उसका जवाब का जिक्र जरूरी समझता हूं। ये पीर साहब के अल्फाज बोल रहा हूं। शिया की तरफ से सहाबे कराम पर एतराज किया जाता है कि उन्होंने लहवो तजारत के लिए नमाज जुमा तर्क कर दी और इस हाल में मस्जिद से निकल खड़े हुए जब हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि उनके दिल में दीन व आखिरत से दुनिया और सामान्य रिस्क की कदर मंजिलत बहुत ज्यादा थी। माजल्ला, इसीलिए तो हुजूर को मस्जिद में खड़े छोड़कर चले गए। ये सवाल, इसका जवाब बड़ा प्यारा दिया। फरमाते हैं, इसके बारे में गुजारिश है कि अकाबिर सहाबा जिनमें खुलफाए राशिदीन और अशरफ मुबशरा थे वो सब तो हाजिर रहे, वो तो गए नहीं। अच्छा, चुनांचे बाकी रहने वालों में उनके असमा सराह से दर्ज है। नीज, पहला जवाब। फिर दूसरा जवाब, नीज ये वाकया हिजरत के बाद बिल्कुल करीबी दौर का है जबकि लोगों को सोहबत नबवी से फैजयाब होने का मौका बहुत कम मिला था। अभी हुजूर की बारगाहे करम से जो फैज रसानी थी वो कायदे से इनको हासिल नहीं हो सकी थी और ये कमाल तो हुजूर की चश्मे करम का था कि उनके दिलों में वजूद अल्लाह ताला की याद के और किसी किस्म की हसरत बाकी न रही थी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तरबियत की जरूरत थी, उसके लिए वक्त दरकार था। इस असना में उनसे लग्जिश के सुदूर का कभी इम्कान था। जब कभी उनसे ऐसी लग्जिश हुई फौरन उस पर उन्हें मुतनब्बेह कर दिया गया और उनकी इसलाह कर दी गई। इस पैहम तरबियत और फैज सोहबत ने वो असर दिखाया कि उन्होंने जाबाजी और सरफरोशी के मैदान में ऐसे अजीब मिसाल कारहाए नुमाया अंजाम दिए कि आसमान के सितारे, आलम बाला के मलाइक और बहिश्त बरी की बहारें झूम उठे। सरोश गैब ने उन्हें लकद रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन का मुजद जाफजा सुनाया, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का की ईमान अफरोज नवायद फिरदौस से गोश बनी। इससे बढ़कर बेइंसाफी और क्या हो सकती है कि एक शख्स के, अब ये मिसाल देखें, इससे बढ़कर बेइंसाफी और क्या हो सकती है कि एक शख्स के तालिब इल्मी के जमाने की कोताहियां बयान करके उसकी इल्मी बुजुर्गी और अखलाकी फजीलत पर जुबान तान दराज की जाए। तो ये थी सूरत जुमा शरीफ की तफसीर। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सलातो सलाम अलैहि सय्यिदी रसूल रब्बी करीम। कुरान मुकद्दस की तलावत तफसीर में मुझसे अगर कोई गलती हुई उसे माफ फरमा। इलाही आलमीन जो कुछ बयान किया गया इसे अपने बारगाह अकरम में शफ़ी कबूल अता फरमा। और रब्बी करीम जितनी भाई बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने इस दर्स को सुना है, रब करीम उन सब की हाजिरी को कबूल फरमा और कुरान पाक को आखिरत में हमारे लिए जरिए निजात बना दे। हर मंजिल पर मददगार बना और हर मंजिल पर नूर कुरान से हमारे लिए कुशादगी वसात और नफस अता फरमा। وصلى الله تعالى على خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.